پیدائش چار باب اس کی پہلی آیت، اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے کاہن پیدا ہوا، تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر کاہن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور کاہن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ کاہن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا پر کاہن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اس لیے کاہن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، اور خداوند نے کاہن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور کاہن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ کاہن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے کاہن سے کہا تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کے تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب کاہن نے خداون سے کہا میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روح زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ تب خداون نے اس سے کہا نہیں، بلکہ جو کاہن کو قتل کرے اس سے سات گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور خداون نے کاہن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو۔ جیسا کہ ہم کل سیکھ رہے تھے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ ہم نے خداوند کے بندہ سلیمان بادشاہ کی زندگی میں دیکھا کہ اس نے خداوند خدا سے اپنے لیے کیا مانگی؟ حکمت مانگی، کہ خداوند خدا مجھے عقل یعنی کہ عقل مند دل عطا کر، اور خداوند نے اس کی دعا کو، اس کی منت کو سنا، اور خدا کو کیا ہوئی؟ خوشی ہوئی، خدا کو یہ پسند آیا کہ اس نے اپنے لیے دولت، عزت، شہرت، عمر کی درازی یا اپنے دشمنوں کی جان نہ مانگی۔ تو خداوند نے جب اس کی دعا کو سنا تو کہا کہ میں تجھے عقل مند دل بھی دوں گا، تیری مانند کوئی زمین پر نہ پہلے ویسا ہوا ہے اور نہ ہوگا، اور اس کے ساتھ میں تجھے عزت، شہرت، دولت سب کچھ دوں گا۔ سو ہم نے کل یہ سیکھا تھا کہ ہمیں تجربہ کرنا ہے، ہمیں اس بات کو معلوم کرنا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا کو کیا خوش करता है। सो आज इस कहानी में जो दो भाइयों की कहानी है, आज से सदियों सदियों पहले आदम के दो बेटे काहिन और हाबल, एक कैसान था, दूसरा भेड़ बकरियों का चरवाहा। और इन दोनों की जिंदगी में जब हम देखते हैं कि काहिन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पेलोठे बच्चों का और उनकी चर्बी का हदिया खुदावंद के लिए लाया। सो दोनों में से एक का हदिया मंजूर किया गया, जो लफ्ज़ यहाँ पर मंजूर यानी कि कबूल किया गया, जो खुदा को पसंद आया। सो काहिन का हदिया नामंजूर यानी कि खुदा को उससे खुशी ना हुई, उससे खुदा को कोई दिलचस्पी ना मिली। और हाबल का हदिया खुदावंद खुदा ने क्या किया, मंजूर किया, खुदावंद को उससे खुशी हुई। सो इन दोनों हदियों में इन दोनों खुदावंद के बंदों को देखते हैं कि दोनों की ज़िंदगी में हमें क्या सबक सीखने को मिलता है। बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है, रोमियो 12 बाप उसकी पहली आयत, पस ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुम सब से इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। सो किसान और चरवाहा, जब हम यहाँ पर ज़रा इस आयत में पढ़ेंगे, यहाँ पर इस आयत में पढ़ेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या मसला था, क्यों खुदावंद खुदा ने इसे कबूल ना किया। चरवाहे की जो जहानत होती है वो क्या करता है, वो जो कुछ उसका है उस पर वो क्या करता है, सिर्फ़ और सिर्फ निगाहबानी करता है कि खुदावंद खुदा ने दिया है। सो जब हम काहिन और हाबल के नाम का मतलब निकालते हैं, काहिन का मतलब है मलकियत, जागीरदार या जायदाद, और जब हाबल का नाम देखते हैं तो हाबल का मतलब है आरजी, बुखारात, अभी नजर आया या अभी गायब हो गया। सो उसने अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा क्या किया, खुदा उन खुदा के हजूर चढ़ाया। किसने, हाबल ने। और हाबल के पलोठों का ये सिलसिला खुदा उन खुदा को पसंद आया। हम इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता उसने अपने बाप को ये करते देखा हो, अपने बाप आदम को करते हुए देखा हो, लेकिन यहाँ पर जिक्र नहीं, बल्कि यहाँ पर ज़रूर उन्होंने ये कहानी सुनाई होगी जो दूसरे बाप में है, तीसरे बाप में। जब खुदावन खुदा ने आदम और हवा के नंगेपन को ढका तो क्या किया था खुदा ने, बर्रे के कपड़ों के खाल के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। सो हो सकता है कि आदम से हाबल ने ये बात सीखी हो कि खुदावन को क्या पसंद है। और काहिन ने अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद जिसका वो मालिक था, अपने हाथ के काम पर क्या किया, तकाजा किया, अपने हाथ के काम को क्या किया, खुदा के हजूर पेश किया, और उसे खुदावन ने मंजूर ना किया। सो इन दोनों भाइयों के रवैये में हमें दो बातें नज़र आती हैं। हमें खुदावन खुदा फरमाता है कि मैं हलीमी को, खाकसारी को पसंद करता हूँ, ना कि तकब्बर को। और इस बंदे का मुंह भी इसीलिए बिगड़ा था क्योंकि ये खुदावंद के हजूर सही तौर पर उस चरवाहे को चढ़ा ना सका। मेरे साथ देखिए इब्रानियों 11वां बाप। इब्रानियों 11वां बाप, यहाँ पर इब्रानियों का मुसन्नफ भी इसी बात की गवाही देता है। जब हम इब्रानियों 11वां बाप उसकी चौथी आयत देखते हैं कि हाबल और काहिन के दोनों के बारे में कि उनके हदिये गुजरानने में उनका रवैया कैसा था। एक ने ईमान के साथ गुजराना कि मैं खुदावन को खुश कर सकता हूँ क्योंकि ये जानवर उसके हैं, सांसें उसकी हैं, सब कुछ उसका है, इसलिए मैं उसे सब कुछ दूंगा। दूसरे ने जायदाद एक ज़िम्मेदार के तौर पर सोचा कि ये सब कुछ मेरा है, इसलिए उसके हदिये को, उसके रवैये को खुदा ने पसंद ना किया। चौथी आयत में क्या लिखा है, इब्रानियों 11वां बाप उसकी 4 आयत, ईमान ही से हाबल ने, किससे? ईमान से। जब भी हमें खुदा की हजूरी में आना है, ईमान ही से हम उसे खुश कर सकते हैं। अगर हम कहें कि ईमान से पहले हम उसे ईमान से खुश करेंगे, तो हम उल्टा काम करेंगे। ईमान से जब आएंगे तो तब हमारे ईमान भी उसे पसंद आएंगे, लेकिन अगर अमाल से आएंगे और ईमान ना रखेंगे तो फिर बात गलत हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, ईमान से हाबल ने काहिन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, ईमान से, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। रास्तबाज होने के सबब, उस रास्तबाज होने की गवाही दी गई। क्यों? क्योंकि उसने अच्छी कुर्बानी गुजरानी। और क्या लिखा है? अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। खुदा अब तक कलाम क्यों करता है? क्योंकि उसकी कुर्बानी अफजल, पसंदीदा, मंजूर थी। इसलिए हम इससे सीख सकते हैं कि खुदावंद को क्या पसंद है। ईमान के ज़बीहे, ईमान की कुर्बानियां, ईमान से जो बात, जो काम खुदा के हुज़ूर किया जाता है, वो खुदावंद को पसंद है। और यहाँ पर आगे क्या कहा? ईमान ही से हनोक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया इसलिए उसका पता ना मिला। और छठी आयत क्या कहती है? बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हाबल ईमान लाया और उसने इस बात पर ईमान रखा कि खुदावन खुदा मेरे इस छोटे से हदिये को कबूल करेगा। उसने अपना हदिया जब दिया, तकब्बर नहीं किया, बल्कि क्या किया? ईमान का भेद क्या है? हलीमी, कि मैं इस लायक नहीं कि खुदा के हजूर जा भी सकूं। आपको याद है वो दो फरीसी की और मैसूल लेने वाले की दुआ? एक ने क्या दुआ की? कि मैं दुआ करता हूं खुदावंद के हजूर, वो अपने आप से दुआ कर रहा है कि मैं रोज़ा रखता हूं, मैं दा यकी देता हूं, लूका की इंजील 18वें बाप में आपको जिक्र मिलेगा, गालबन उसकी 10 आयत में, मैं सब अच्छे भले काम करता हूं, मैं इस जालम की तरह नहीं, इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं, मैं इस तरह का जनाकारी नहीं, बल्कि मैं क्या हूं? रास्तबाज हूं। तो वो अपने घर गया किस हालत में? रास्तबाज ठहर कर नहीं, लेकिन उस बंदे ने जिसने आसमान की तरफ निगाह भी ना करना चाहिए, क्या कहा? ए खुदावंद, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। सो हमें इन दोनों बंदों की ज़िंदगी में भी यही बात आती है, एक ने तकब्बर किया और कहा कि मैं ये करता हूँ, और खुदावंद ने उसे कहा कि तू रास्तबाज नहीं है, और दूसरे ने हलीमी से बात मान ली और उसे क्या गिना गया? रास्तबाज। सो हाबल को ईमानदार और काहिन को बेईमान कहा गया है। मेरे साथ निकालें चंद एक हवाला जात, आज हम काहिन की ज़िंदगी पर थोड़ी सी गौर करें। नए अहदनामा में से पहला यूहन्ना 3 उसकी 12 आयत, पहला यूहन्ना 3 उसकी 12 आयत, और काहिन की मानद ना बने जो उस शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल किया, और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? पहली बात, काहिन की मानद ना बने। क्यों उसका मुंह बिगड़ा हुआ था? क्यों उसके मुंह पर गुस्सा था? क्यों वो गजबनाक था? क्यों उसका दिल खुश नहीं था? क्यों खुदा ने उसके हदीये को कबूल नहीं किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे, उसके काम बुरे थे, और उसके भाई के काम रास्ती के थे। सो काहिन खुदावंद के हजूर मकबूल इसलिए नहीं ठहरा क्योंकि उसने अपने दिल में खुदावंद को जगह नहीं दी, बल्कि दिखावा करना चाहता था, हम जैसे कह सकते हैं। वो अपनी मनमानी के उस हदीये को खुदा के पास लाया और उसने कहा कि मैं अपने आप को बढ़ाता हूँ, और उसका बढ़ोना अपने आप को क्या हुआ, खुदा के हुजूर कबूल ना ठहरा। मेरे साथ एक और हवाला देखे, यहूदा का, यहूदा उसका पहला बाप, एक ही बाप है यहूदा, उसकी 11वीं आयत। यहां पर भी कहा गया है, इन पर अफसोस के ये काहिन की राह पर चले। किन लोगों की तरफ इशारा है? जब हम पीछे देखते हैं तो हमें 9 मुख्तलिफ मिसालें मिलती हैं उन लोगों की जिन्होंने राह काहिन की राह इख्तियार की। वो ईमान से ना चले और वो हलाक हो गए। सदूम और अमूरा के लोग ईमान से ना चले, बल्कि उन्होंने क्या किया, बेईमानी से ज़िंदगी बसर की। और फिर हम देखते हैं कि उन तमाम फरिश्तगान ने भी जो ईमान से ना चले, बल्कि उन्होंने धोखा खाया और क्या हुए, गुमराह हुए। सो हमें क्या कहा गया है, 11वीं आयत, इन पर अफसोस के ये काहिन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़े हिर्स से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। सो हमें आगाह किया गया है, अफसोस उन पर जो काहिन की राह पर चलते हैं। काहिन की राह क्या थी? बुराई की राह। इसीलिए खुदावन खुदा ने उससे पूछा, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? जब जब हम तारीकी में होते हैं, खुदावन खुदा हमसे पूछता है कि हमारा मुंह क्यों बिगड़ा है। वो छोटी सी आवाज़ हमारे अंदर आती है और कहती है, हमारा मुंह क्यों बिगड़ा है, हम क्यों दुरुस्त नहीं हैं। इसलिए खुदावन खुदा ने उसे आगाह किया, 7वीं आयत, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना हो। उसने अपने दिल में बदी का तकाजा किया था, बधाई का तकाजा ना किया। उसने बदी को ठान लिया था, ना के भलाई को। सो खुदावन ने कहा कि अगर तू भला करे, अच्छा करे, ऐसा काम करे जो मेरी नज़र में पसंदीदा हो, तो क्या मैं तुझे कबूल ना करूं, दूसरे लफ्ज़ों में। लेकिन क्या कहा, अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मश्ताक है, पर तू उस पर गालब आ। हम इस दोनों भाइयों की जिंदगी में सीखते हैं, एक ईमान लाया, दूसरा गैर ईमानदार रहा। एक मकबूल ठहरा, दूसरा नामकबूल ठहरा। सो हमें इस जिंदगी से क्या तजर्बा करना है कि खुदा को क्या पसंद है। जब भी खुदावंद के हुजूर आए तो हमें ईमान से खुदा को खुश करना है। इसका मतलब है कि पहले ईमान से हम खुदा के हुजूर पसंदीदा ठहरते हैं, और उस ईमान में जो कुछ करते हैं वो खुदा को पसंद आता है। लेकिन बहुत दफ़ा उल्ट क्या होता है, पहले हम ईमाल करते हैं, कहते हैं कि हमारे ईमाल पसंद आए, ईमान पसंद ना आए। लेकिन खुदा क्या पसंद करता है, ईमान, और ईमान में हर ईमाल को पसंद करता है, क्योंकि ये हमें हुक्म है कि ईमान बगैर ईमाल के क्या है, मुर्दा है। हम मसीहियों को नेकी और भलाई के लिए पैदा किया गया है। सो इसलिए खुदावंद का बंदा पालूस रसूल कहता है, मेरे साथ देखें, इफ़सियों 2 बाप उसकी 8, 9 और 10 आयत। इन दो आयात में हमें पालूस रसूल बहुत गहरा भेद सिखाता है, सादा तौर पर, जिससे बहुत से लोगों को आज गुमराही का सामना है। इफ़सियों 2 बाप उसकी 8 आयत, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। फजल ही से निजात मिली है, यानी कि तुम निजात के वारिस हो इस वक्त, यक वक्त तुम जो ईमान रखते हो। यहां पर यह नहीं कहा कि क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से निजात मिलेगी या निजात की उम्मीद होगी। हम सबको ईमान में क्या मिलती है, निजात मिलती है एक पल में। और आगे क्या लिखा है, اور نہ ایمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. نجات کہاں کس سے ہے؟ ایمان سے ہے, ایمال سے نہیں. اور آگے کیا کہا گیا ہے؟ آپ جو کوئی نجات پا چکا ہے تو اس کو کہا گیا ہے دسویں آیت میں, کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں, جو نئی مخلوق ہم بنے ہیں, نئی پیدائش جو ہوئی ہے, اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے. خداوند خدا نے جو کام ہم سب کے لیے کیے تھے, مخلوق ہوئے, جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. خدا شروع ہی سے اپنے دل میں یہ بات رکھتا ہے کہ آپ میں اس کے لیے کیا کریں گے. لیکن بہت دفعہ کیا کرتے ہیں لوگ, پہلے ایمال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایمال سے ہم پسند آنا کرنا خدا کو پسند آنا چاہتے ہیں. ایمال سے کوئی بھی خدا کو پسند نہیں آ سکتا, کیونکہ ایمال ایمان کے بغیر کیا ہے؟ مردہ ہے. اور اگر ایمان بغیر ایمال کے ہے تو وہ بھی مردہ ہے. اس لیے ہمیں ایمان لانا ہے اور پھر اس میں عمل کرنا کیا ہے؟ نیک نیتی کی زندگی بسر کرنی. کس کی طرح؟ حابل کی طرح, کاہن کی طرح نہیں, حابل کی طرح خدا کے حضور اس کی مرضی کو جاننا ہے تاکہ اس کو کیا پسند ہے. تو سب اس آیت کو کہیں گے, اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے. آئے ہم دعا کریں.